हरे रामा 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 हरे हरे निताई गौर हरि बोल हरि बोल गौर हरि बोल निताई गौर प्रेमानंदे जय जय श्री राधे श्याम हरे कृष्ण ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय सो वेलकम टू पेठा गांव हरे कृष्णा। इसका पौराणिक नाम जो है वो प्रविष्ट वन है। प्रविष्ट वन यानी का मतलब है कि जहां से भगवान ने भूमि में प्रवेश किया गिरिराज गोवर्धन को उठाने के लिए, इसलिए इसका नाम है प्रविष्ट वन। और आपको हमने तुरंत दर्शन करने को बताया क्योंकि दर्शन बंद होने वाला है बहुत समय बहुत जल्दी। तो वो जो दर्शन है वो चतुर्भुज नारायण का दर्शन है, लेकिन वो चतुर्भुज नारायण नहीं है, वो श्री कृष्ण भगवान है। तो उसके पहले कि मैं उसकी कहानी बताऊं, चतुर्भुज नारायण जहां पर खड़े हैं, आपको उन्होंने कंबल खोल के दिखाया क्या दर्शन? नहीं, कुछ लोग हाँ बोल रहे हैं। तो ऐसे दो हाथ है ना उनके, लेफ्ट में क्या है? लेफ्ट में गदा है, राइट में शंख है, और नीचे हाथ में राइट में क्या है? कमल है, कमल, और लेफ्ट हाथ में सुदर्शन चक्र है। तो वो भगवान जहां खड़े हैं, जैसे कि आपकी ओर देख रहे हैं, तो उनकी बाईं ओर वो गुफा थी जो अभी नहीं है। हमने कई साल पहले उस गुफा का मुख का दर्शन किया था, बिल्कुल ठाकुर जी के लेफ्ट साइड में, हमारे राइट साइड में। अभी वहां पर दीवार बनाई गई है क्योंकि वहां पर बहुत जहरीले सांप निकलते थे, इसलिए उन्होंने इसको बंद कर दिया है। इस तरह से एक प्राचीन स्थान अभी लुप्त हो गया है, लेकिन वन तो वैसा ही रहेगा, भगवान का वन तो, वन की महिमा तो वैसे ही रहेगी। तो ये जो गुफा है, ये इसके में एक थोड़ा समझने वाली बात ऐसी है कि जब गिरिराज गोवर्धन का जन्म हुआ था, तभी वो कहा गया है कि वो 1 कोटि योजन आकाश में ऊंचे थे, केवल मतलब 8 कोटि मील आकाश में ऊंचे थे वो। फिर जन्म के समय ही उनको भगवान की दया से छोटा किया गया, तो वो कहते हैं कि 1000 योजन ऊंचे हो गए वो, मतलब कम हो गए। लेकिन वहां पर जब उनका जन्म हुआ तो उनका जो अस्तित्व था वो जड़ी बूटियों से, सुंदर सुंदर फलों से, फूलों से, गिरी कंदर यानी गुफाएं, उपवन, झरने, बैठने की जगह, सोने की जगह, घास खाने के लिए, गाय के लिए, हर प्रकार की जो भगवान के लीला के लिए व्यवस्था होनी चाहिए वो सब थी उसके अंदर। तो पुलत्स्य मुनि नाम के एक बहुत सिद्ध योगी थे जो अपने आप को एक साथ में 9 रूपों में विभाजित कर सकते थे। ही वॉज एबल टू एक्सपांड इन 9 फॉर्म्स सेम। तो ऐसे योगी काशी छोड़कर वाराणसी छोड़कर हिमालय में गए थे, तो उन्होंने सुंदर गिरि गोवर्धन का दर्शन किया और उनके पिताजी का नाम था द्रोणगिरी। द्रोणगिरी के पुत्र में पर्वत के रूप में गिरि गोवर्धन का जन्म हुआ था, गिरिराज। तो उन्होंने द्रोणगिरी से गिरि गोवर्धन की मांग की कि हमें गिरि गोवर्धन चाहिए। तो गिरि गोवर्धन तुरंत तैयार हो गए, पिताजी बेहोश हो गए कि हमारे पुत्र जा रहे हैं, लेकिन साधुओं की विनती को टाल नहीं सकते हैं। सच्चा गृहस्थ जो है वो साधुओं की आज्ञा पालन करने के लिए वचनबद्ध रहता है। बेहोश हो गए, फिर जग गए, फिर बड़े ही दर्द के साथ में उन्होंने हाँ कह दी। तो गिरिराज गोवर्धन ने एक कंडीशन रखी कि आप हमको उठा के ले जाएंगे, लेकिन जहां पर जमीन पे रखेंगे वहीं पर हम बस जाएंगे। तो बोले कोई बात नहीं, हम तो ऐसे ही उठा लेंगे आपको, हमको नीचे रखने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि सिद्ध बाबा थे वो, उनके लिए एक पहाड़ उठाना कोई बड़ी बात नहीं। तो पुलस्त्य मुनि ने वो गिरिराज पर्वत उठाया था जो 1000 योजन आकाश में ऊंचा था, मतलब कई कई करोड़ों गुना ऊंचा पर्वत जो है उन्होंने उठाया था। और वो वहां से हिमालय से निकले वो, और जब काशी की ओर दक्षिण दिशा में जा रहे थे तो ब्रजभूमि आई, और गिरिराज के जीवन का उद्देश्य था कि वो ब्रजभूमि में आकर भगवान की सेवा के लिए उनका इंतजार करें। जब ब्रजभूमि आई तो अचानक पुलस्त्य मुनि को लघु शंका का वेग आया, जो सारे इंद्रियों को दमन कर सकते हैं, अपने क्रोध को, अपनी इंद्रियों के वश को दमन कर सकते हैं, अचानक उनको लघु शंका का वेग आया तो उसको वो कंट्रोल नहीं कर पाए, क्योंकि गिरिराज गोवर्धन का भक्ति का जो वेग था वो उनके इंद्रियों के वेगों के कंट्रोल करने के शक्ति से भी बढ़कर था। तो इसलिए उनके भक्ति के आवेग के सामने इनका इंद्रियों को दमन करने का जो शक्ति था वो पराजित हो गया, और बिना समझे वो इतने विचलित हो गए, तुरंत उन्होंने गिरिराज को नीचे रखा और तुरंत लघु शंका का उत्तर देने के लिए गए। जब शांत होकर लौट के आए और दोबारा गिरिराज को उठाने का प्रयास किया तो वो उठा नहीं पाए उसको। गिरिराज ने कहा था, हमने तो आपसे वादा किया था कि आप नहीं रखेंगे, और रखेंगे तो हम वहीं रह जाएंगे। तो पुलस्त्य मुनि बहुत क्रोधित हो गए और उन्होंने शाप दिया कि तुम हर रोज एक सरसों के दाने की ऊंचाई कम हो जाएगी आपकी, जमीन में धस जाओगे आप। तो सत्ययुग से द्वापर तक वो कम 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 होते गए, और जो भगवान ने उठाया वो उससे बहुत ही छोटा पर्वत था। तो एक भगवान के द्वारा निर्माण किया हुआ एक जो अणुमात्र जीव है वो सिद्ध अवस्था में अगर इतना बड़ा पर्वत उठा सकता है तो भगवान को नहीं उठा सकते, तो उनके लिए तो खेल है, खिलौना है वो। ऐसे अनेक पर्वत लंबे लंबे जिस लोक पर रहते हैं, और ऐसे अनेक लोक का जो ब्रह्मांड है वो आकाश में तैरते रहता है भगवान की इच्छा से, पर्वत उठाने में क्या तकलीफ है उनको। तो ये मैंने इसलिए बताया कि जब वो उतने आकाश में थे उतना उसका विस्तार भी बड़ा था, इवन द एक्सपांस वॉज टू ब्रॉड, लेकिन जब वो जमीन पर ढसने लगे तो वो ऐसे 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 हो गए ना। जब ये ऐसा पर्वत ऐसे नीचे जाएगा तो फिर जिसका विस्तार है, परिघ है, उसका जो सरकमफेरेंस है वो भी कम कम होते जाएगा ना। तो जिस समय भगवान ने गिरिराज को उठाने के लिए यहां पर आए, तो आपको पता है इतनी भयंकर अवस्था थी उस समय, इतना घनघोर वर्षा हो रही थी, सब कुछ बह रहा था, और पता है जीवन रहेगा कि नहीं रहेगा इसकी चिंता थी। तो ऐसे कठिन अवस्था में भगवान ने कहा चलो हमारे संग, सब लोग को लेके भगवान यहाँ पर आए। तो उन्होंने कहा ग्वाल बालों को कि मैं गिरिराज को उठाने वाला हूँ। तो ग्वाल बालों को विश्वास नहीं हुआ, अरे इतना सा बालक आप कैसे उठाओगे इस पर्वत को। तो भगवान ने ग्वाल बालों के मन में ये विश्वास जताने के लिए कि मैं उठा सकता हूँ, उन्होंने कहा कुछ करके दिखाओ। तो आप यहाँ से अभी जाएंगे कुछ देर के बाद घूम के, पीछे एक मंदिर दिखाई पड़ रहा है आपको, उसका शिखर दिखाई पड़ रहा है, वो जानकी वल्लभ जी का मंदिर है। उसके अंदर का जो कदम का पेड़ है उसको भगवान ने कपड़े की तरह निचोड़ दिया, ऐसा ट्विस्ट कर दिया उसको पूरा। तब ग्वाल बालों को विश्वास हुआ कि हाँ भाई आप कर सकते हो। तो वो जो ट्विस्ट किया हुआ पेड़ है ना, वो अभी भी वहां पर है, आप अपने आंखों से देख सकते हो। हाउ कैन समबडी ट्विस्ट ट्री, इट्स अ ह्यूज ट्री। अभी वो उसमें जीवित नहीं है वो, लेकिन उसका जो ट्विस्ट किया हुआ जो पेड़ है वो अभी भी वहां पर है, इसको वार्निश लगा के कांच के अंदर बंद करके रखा है। बड़ी अद्भुत लीला स्थली है वो। तो फिर भगवान फिर वहां से जब हुआ ये तो यहां पर आए, तब गिरिराज गोवर्धन यहां तक था, उसका जो सरकमफेरेंस था वो ऊपर था ना उस समय, उसके बाद में अभी वो जमीन में धस धस के गया है, तो फिर वो पर्वत जो है यहां से बहुत दूर हो गया अभी, ये उसका टेक्निकल रीजन है। तो भगवान यहां से प्रविष्ट गुफा से उन्होंने प्रवेश किया जमीन के अंदर, तब किसी को पता नहीं था वो क्या करने वाले हैं, तो उन्होंने अपने बाएं हाथ से गिरिराज को उठाया और फिर अपनी उंगली पे धारण किया उसको, और सबको कहा कि आ जाओ अंदर आ जाओ, कोई चिंता करने की बात नहीं है, आप डरो मत, क्योंकि सबको चिंता थी बाल बालों को, कहीं गिर गया पर्वत तो हमारे ऊपर वैसे भी मर रहे हैं ऐसे भी पड़ रहे हैं। तो भगवान ने उनको यकीन दिलाया, डोंट वरी, मैं इसको आराम से पकड़ के खड़ा हूँ, कोई मुझे पसीना नहीं आ रहा है, कोई सांस नहीं फूल रही मेरी, और मैं डर नहीं रहा हूँ, उठा के खड़ा हूँ आराम से। तो ये प्रविष्ट वन है, प्रविष्ट गुफा है, जहां से भगवान ने गिरिराज को उठाया था। और ये जो स्थली है पूरी, इसका लोकल नाम अभी है पारासोली, लेकिन उसका संस्कृत नाम है परम रास स्थली, उसका अपभ्रंश हो गया है पारासोली, लेकिन नाम है उसका परम रास स्थली, द डिवाइन अल्टीमेट प्लेस ऑफ परफॉर्मिंग रास डांस ऑफ कृष्णा। तो भगवान ने पहला रास जो रचाया था वो कार्तिक महीने में, जो 7 साल के भगवान हुए, तो कार्तिक पूर्णिमा शरद पूर्णिमा के दिन यानी शरद ऋतु में उन्होंने गोपियों को बंसीवट पर बुलाया, और बंसीवट पे बंसी बजा के उन्होंने सबको आकर्षित किया, बहुत सारा कसौटी किया उनका, प्रश्न किए उत्तर किए और टेस्ट किया, उसके बाद में भगवान ने रास रचाया सबसे पहला, उसको कहते हैं शारदीय रास, शरद ऋतु का रास। बहुत सुंदर सुंदर लीला है, जमुना किनारे में वो लीला हुई, और वसंत ऋतु में यानी कि स्प्रिंग टाइम के अंदर भगवान ने यहां पर रास किया परम रास स्थली में। ये पूरा क्षेत्र जो है वो परम रास स्थली के नाम से जाना जाता है। तो परम रास स्थली में जब भगवान ने रास रचाया, स्प्रिंग यानी कि मार्च अप्रैल, मे बी फरवरी मार्च, अभी वसंत पंचमी जो है वो आएगी 15 फरवरी को, तब वसंत ऋतु शुरू होता है, नए नए फल फूल जो है वो पेड़ पे लगने लगते हैं। तो उस समय भगवान ने रास रचाया, तो सारी गोपियों ने भगवान के साथ नृत्य किया, तो उनके शरीर से दिव्य स्वेद निकला, स्वेद जल, और वो दिव्य स्वेद जल इकट्ठा हुआ, उसका सरोवर बन गया, और वो सरोवर अभी चंद्र सरोवर नाम से प्रसिद्ध है, जो यहाँ से 3 किलोमीटर है, यहाँ से हम वहां जाएंगे दर्शन करने के लिए। तो जब ये नृत्य हो रहा था तो सब आकाश में देवता लोग इकट्ठा हो गए, यक्ष किन्नर किम पुरुष गंधर्व, जो सब लोग गाने बजाने में नृत्य करने में संगीत में बहुत निपुण हैं, ऐसे सब देवता लोग आकाश में इकट्ठा हुए, और वो गोपियों के पास में और कृष्ण भगवान के पास कुछ वाद्य नहीं थे, ऐसे वर्णन आता है कि वो कृष्ण की मुरली, गोपियों के पैर के घुंघरू और गोपियों के कंगन, यही उनका म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट था, उसी को बजा बजा कर उन्होंने नृत्य आरंभ किया, और वो इतना मुरली घुंघरू और कंगन के आवाज इतने मधुर थे कि सब देवता लोग मोहित हो गए, और मोहित होने के पास गंधर्व यक्ष किन्नर लोग जो थे, जो म्यूजिक में एक्सपर्ट थे, वो उस राग को स्वर को पकड़ने का प्रयास करने लगे, लेकिन वो पकड़ नहीं पाया उसको, बहुत प्रयास किया उन्होंने उनको साथ देने का, मतलब तो नृत्य हो रहा है तो उसको सपोर्ट करने के लिए उन्होंने अपना वाद्य अपना सब शुरू किया, लेकिन वो पकड़ नहीं पाए अंतिम क्षण तक। इंद्र उतर के आए, और उन्होंने एक बड़ी शिला है इंद्र दुंदुभी, या तो उसको कहते हैं बाजनी शिला, उसको बजाना आरंभ किया उसने साथ देने सेवा के रूप में, लेकिन वो साथ दे नहीं पाए, फिर भी बजाते रहे लेकिन साथ दे नहीं पाए। चंद्र देवता आए, सोम देवता मतलब चंद्र देवता, उन्होंने देखा इतना सुंदर रास उत्ति हो रहा है, तो चंद्र देवता अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाए, वो बेहोश हो गए, बेहोश हो गए तो होश में आ गए, तो देखा कि उन्होंने चंद्र सरोवर अपना जो सरोवर है वो बन रहा है जल का, तो उस सरोवर में उन्होंने उनके पास जो समुद्र मंथन में प्राप्त किया हुआ अमृत था वो डाल दिया उसके अंदर, और उसके बाद में जब रास की क्रीड़ा जो है चल रही थी, तो वो चंद्र देवता फिर अपने आप को होश में और काबू में नहीं रख पाए तो वो स्वयं इस सरोवर में पिघल गए, इसलिए उसका नाम पड़ा चंद्र सरोवर। ऐसी अद्भुत जगह है वो। और उस रास में भगवान ने एक एक रास में अनंत लीलाएं की हैं और अनंत बार अनंत जगह पर उसके बाद में रास रचाया है। सबसे पहला रचाया बंसीवट में, उसके बाद में यहां रचाया, उसके बाद में हरेक जगह हरेक वन में भगवान ने रास रचाया, खास करके वृंदावन में और गोवर्धन के आसपास। तो भगवान कभी अकेले अंतर्जान हो जाते हैं, कभी राधा रानी को लेकर अंतर्जान हो जाते हैं। तो इस बार वो दो लीला किया उन्होंने, अचानक रास के बीच में से वो अंतर्धान हो गए, राधा रानी भी अदृश्य हो गई, क्योंकि उनको राधा रानी के साथ में अकेले रहने का इच्छा थी। उधर गोपियां व्याकुल हो गई और ढूंढने लगी, तो एक सुंदर से वन में उन्होंने राधा और कृष्ण को पाया कि अकेले बैठकर वो लीला कर रहे थे। तो उनको देखकर जब गोपियां ढूंढते ढूंढते आ रही थी, उन्होंने देखा कि राधा कृष्ण अकेले बैठे हुए हैं, तो कृष्ण का ध्यान गया उसकी ओर और कृष्ण ने उनको देखा तो कृष्ण भगवान एकदम स्तंभित हो गए, ही गॉट स्टंड, और वो जैसे मूर्छित से हो गए, मतलब ही बिकेम लाइक अ प्रतिमा, बिकेम लाइक अ इमेज, नॉन मूविंग इमेज। वो एक लीला है यहाँ की कि भगवान स्तंभित हो गए सब गोपियों को देखकर, उनके हृदय के भाव को देखकर, उनकी व्याकुलता को देखकर, उनके प्रेम को देखकर, जो जिस प्रेम से ढूंढ रही थी उनको, कहाँ गए हमारे श्याम सुंदर जी, तो भगवान उनके प्रेम को देखकर मूर्छित हो गए। दूसरे समय पर जब उन्होंने रास लिया किया था यहाँ पर, तो फिर गोपियों को थोड़ा अभिमान हो गया कि भगवान सबको छोड़कर केवल मेरे साथ नृत्य कर रहे हैं। हर गोपी को लग रहा था कि वो केवल मेरे साथ हैं, लेकिन वो सबके साथ थे, अनंत रूपों में, अनंत कोटि कोटि रूप धारण करके वो सब गोपियों के साथ में, एक एक गोपी के साथ में नृत्य कर रहे थे। तो जब ये अभिमान हुआ तो कृष्ण भगवान अंतर्धान हो गए और उन्होंने इस जहाँ जो सरोवर है यहाँ पर आकर खड़े हो गए, जहाँ पर अभी खड़े हैं, वैसे तो मूर्ति बराबर नहीं, लेकिन यहाँ खड़े हो गए और गोपियाँ वहाँ से व्याकुल होकर निकलने लगी ढूंढते हुए, कहाँ गए हमारे श्याम सुंदर जी। लता पताओं को, फूलों को, डालियों को, फलों को, प्राणियों को पूछते पूछते आ रहे थे। तो भगवान कृष्ण भगवान जो है वो चतुर्भुज नारायण बनकर रास्ते पर खड़े हो गए। तो लोग कह रहे हैं कि अरे इनसे पूछना चाहिए कहाँ गए हमारे कृष्ण। तो उन्होंने उनको प्रणाम किया और पूछा कि आपने कृष्ण को देखा है। तो उनका प्रेम देखकर कृष्ण बहुत भाव विवल हो गए, उन्होंने कहा कि इस तरफ गए वो, सब गोपियां भागी उस तरफ। उसके लास्ट में राधा रानी व्याकुल होकर आई एक भवरे से बात करते करते, और वो भाव देखकर कृष्ण जो है वो इतने इतने भाव विभोर हो गए कि वो बड़ी मुश्किल से, बड़े प्रयास के साथ अपने चतुर्भुज रूप को बनाए रखने का प्रयास कर रहे थे। इट वॉज लाइक स्ट्रगलिंग टू मेंटेन हिज फोर आर्म फॉर्म। और उस अवस्था में जब वो राधा रानी को देख रहे हैं भवरे से बात करते हुए, तो बड़ी मुश्किल से वो अपने आप को बनाए रखने का प्रयास कर रहे थे। उतने में राधा रानी की पूछते कि कहीं आपने मेरे श्याम सुंदर को देखा है, तो उसका उत्तर ही नहीं दे पाए वो। ही कुड नॉट आंसर, ओनली हिज टू आर्म्स मेल्टेड, उनके दो आर्म भुजा तो थी वो पिघल गई पूरी तरह से, और वो उनके नियंत्रण के बाहर, आउट ऑफ हिज कंट्रोल, ही बिकेम कृष्णा अगेन। ही वॉन्टेड टू रिमेन एज चतुर्भुज नारायण, बट ही आउट ऑफ हिज कंट्रोल, बियॉन्ड हिज पावर ऑफ कंट्रोल, ही जस्ट बिकेम कृष्णा, ही लॉस्ट हिज नारायण फॉर्म। सो उसका तात्पर्य यह है कि ब्रजभूमि जो है वो माधुर्य भूमि है, यहां पर ऐश्वर्य भी अनंत है, लेकिन जो नियंत्रण है वो माधुर्य का है। माधुर्य इज कंट्रोलिंग द ऐश्वर्य, द ऑपुलेंस ऑफ कृष्णा। तो ये जो दिव्य धाम है इसके अंदर तो ऐश्वर्य है ही, दिव्य ऐश्वर्य है, वैकुंठ से भी कई गुना ऐश्वर्य यहां पर है। लेकिन प्रधान जो नायक है वो ऐश्वर्य नहीं है, प्रधान नायक जो है वो माधुर्य है। द स्वीट नेक्टेरियन मेलो ऑफ लविंग डिवोशनल सर्विस इज हैज द प्रिडोमिनेंस इन दिस धाम, एंड ऐश्वर्य ऑल्दो इट इज अनलिमिटेड, इट कैनॉट टेक द प्रिडोमिनेंस इन दिस धाम। एंड वेन एवर कृष्णा tries to exhibit some opulence, it gets defeated very easily by the love of the conjugal nature of the gopis and also Mother Yashoda and also cowherd boys. So the desire to make joke with the gopis by taking a form of four-armed Vishnu was completely and entirely defeated by gopis' conjugal love for Krishna. So this is that place where Krishna attempted but failed miserably. Here, यहाँ पर जो है वो हमेशा कृष्ण परास्त हो जाते हैं, कुछ भी करते हैं तो हार जाते हैं, इतने हारते हैं कि वो गोपियों को कहते हैं कि मैं भी क्या करूं, आप अपने सेवा में संतुष्ट रहो, मैं आपके लिए कुछ नहीं कर सकता. He simply loves and he also helplessly gets defeated here. तो हमें भी वो यहाँ प्रार्थना करनी चाहिए कि जो प्रेम गोपियों के हृदय में था, जिसके द्वारा हमेशा भगवान बेबस हुआ करते थे, विवश हुआ करते थे, उसका थोड़ा एक अंश हमको भी प्राप्त हो जाए. तो यहाँ पर वो चतुर्भुज नारायण जी जो है वो कमल के फल फूल के अंदर खड़े थे, जो कि वो क्षीरोदक शाही विष्णु के रूप में खड़े थे. तो ये क्षीर उदक सागर यहाँ प्रकट हो गया, तो इस कुंड का नाम है खीर सागर, यानी कि खीर यानी कि वो खाने वाले खीर नहीं, खीर मतलब क्षीर, क्षीर KSHIR, क्षीर यानी कि दधी यानी दुई सॉरी दूध मिल्क, तो मिल्क ओशन जो है ना वो यहाँ पर प्रकट हो गया. और ये उसी स्थान, ये स्थान जो उसी लीला का प्रमाण देता है कि कैसे भगवान यहाँ पर परास्त हो गए गोपियों के प्रेम के सामने. यहाँ पर एक सुंदर लीला है, सब लोग बड़े ध्यान से सुनना. हाँ, इसको नींद आ रही क्या? तो हरी बोल बोलना, नींद आए तो हरी बोल. तो भगवान जब गोपाल जी के रूप में प्रकट हुए, आप जानते हैं सब, माधवेंद्रपुरी ने यहाँ पर गोपाल जी को प्रकट किया, स्वप्न में आए भगवान उनको प्रकट किया, उनको ब्रज के पत्थर और जमीन के अंदर से उनको निकाल दिया भगवान को, और फिर गिरिराज के ऊपर उनको स्थापन किया गया, उनको 56 भोग लगाया गया, अन्नकूट का उत्सव लगाया गया. तो गोपाल जी का ऐसा वर्णन आता है कि गोपाल जी बड़े अद्भुत ठाकुर जी हैं. हाँ, वो ऐसे अनोखे ठाकुर जी है कि कभी मूर्ति के रूप में लीला करते हैं, कभी प्रत्यक्ष होकर लीला करते हैं. जब उनकी मर्जी होती है तो मूर्ति से बाहर आकर वो व्यक्ति रूप बनते हैं और ग्वाल बालों के संग खेलते हैं. कारण उसका यह बताया गया है कि जब वो स्वयं बालक के रूप में यहाँ पर थे तो कहते हैं उनका दिल नहीं भरा बाल लीला करके, तो दोबारा वो गोपाल के मूर्ति के रूप में आए, श्रीनाथ जी के रूप में, और अपनी बची हुई जो बाल लीला है, सख्य लीला जो है, उसको उन्होंने जताया अपने अलग अष्ट सखाओं के साथ. तो उसमें एक उनके सखा थे बहुत सुंदर, जो श्रीनाथ जी भगवान यहाँ से द्वारका से अंतर्धान होने के बाद में गोपाल जी की लीला में वो शामिल थे, उनका नाम था कुंभन दास. हाँ, बड़े श्रेष्ठ भगवान के सखा थे वो. और वो यहाँ पर बैठकर प्रविष्ट गुफा के पास, जहाँ पर भगवान ने जमीन में प्रवेश, गुफा में प्रवेश करके गिरिराज को उठाया, वहीं खड़े बैठकर वो ध्यान लगा रहे थे. तो ध्यान में उनको सुंदर लीला का दर्शन हुआ. आप सब लोग ध्यान से सुनना और अपने मन में वो चित्रपट देखने का प्रयास करना. हाँ, कि भगवान एक गोपी के घर में घुसे हुए हैं अकेले, और ऊपर लटके हुए मटके की ओर चढ़े हुए हैं अच्छी तरह से, और दोनों हाथ से माखन खा रहे हैं. हाँ, यहां वहां देख रहे हैं, कोई देख तो नहीं रहा है, खा रहे, एक हाथ नहीं दोनों हाथ से खा रहे, कभी ये हाथ से लटके हुए हैं और दूसरे हाथ से खा रहे हैं, ये हाथ से लटक के ये हाथ से खा रहे हैं. इतने मग्न है और कुंभनदास जी दर्शन कर रहे हैं उस लीला का अपने ध्यान में, तो अचानक कुंभनदास जी को जो देख रहे हैं और जो माखन खा रहे हैं, उनको भी ध्यान में आता है कि उनकी धोती का जो पिछला हिस्सा पीछे की जगह घुसाया हुआ है वो ढीला हो रहा है और फिसल रहा है. तो अभी भगवान को माखन इतना प्रिय है तो माखन को छोड़ना नहीं चाहते. वो कैसे है ना, अहि तुकी अप्रतिहता, हमारी भक्ति कैसी होनी चाहिए, अनइंटरप्टेड. तो उनको भी अनइंटरप्टेड, हाँ, बिना बाधा से, बिना अवरोध से, बिना उसके कंटिन्यूटी छुटना नहीं चाहिए, उनको कंटिन्यूस माखन खाना था. उनको एक क्षण के लिए भी किसी और के लिए, और काम के लिए उसमें व्यवधान या अंत क्या कहते हैं उसको, इंटरवल नहीं चाहिए था उनको, तो बहुत देर उन्होंने कोशिश किया कि भाई अपने आप संवर जाए वो छूटा हुआ छूटने वाला हिस्सा, लेकिन वो छूट नहीं पाया, अपने वो बच नहीं पाया, वो धीरे धीरे और छूटने लगा, क्योंकि इतने मशगूल होकर खा रहे हैं तो धीरे धीरे उनका वो पीछे का हिस्सा धोती का छूटने लगा और छूट गया, फिसल भी गया। तो भगवान ने फिर भी चाहा कि हम माखन खाना बंद नहीं करें, लेकिन धोती भी ठीक होनी चाहिए। तो क्या हुआ, उनके पीछे कंधे से दो और भुजाएं प्रकट हुई, ऐसे पीछे गई, छूटी हुई धोती को ऐसे ऊपर किया, पीछे घुसाया, फिर वो दो हाथ जो है प्रकट हुए थे, वो अदृश्य हो गए और माखन खाना वैसे ही अप्रतिहता चलता रहा। तो भगवान क्या नहीं कर सकते, हाँ तो वो भी चतुर्भुज है, हाँ लेकिन वो नारायण नहीं है, वो कृष्ण है, वो चार के आठ भुजा भी कर सकते हैं, सामने का भी निकलता, सामने का भी दो अलग भुजा से करते हैं, पीछे का दो अलग भुजा से करते हैं, हाँ क्या नहीं कर सकते। तो ये दर्शन जब उन्होंने किया अपने ध्यान में, तो उसके बाद में उनको पुत्र हुआ, उसका नाम रखा चतुर्भुज दास। तो कुंभन दास के पुत्र जो है चतुर्भुज दास, और वो भी उनके एक सखाओं में से एक थे, वो उनके अष्ट सखा माने गए हैं, उनमें दो वो हैं। तो कुंभन दास और चतुर्भुज दास के साथ में भगवान मूर्ति से बाहर प्रकट होकर लीला करते थे, और चतुर्भुज दास के लीलाओं का वर्णन ऐसा है कि वो चतुर्भुज दास केवल उनको दिखाई पड़ते थे और अन्य किसी को दिखाई नहीं पड़ते थे, उनके साथ बात करते थे, उनके साथ नाचते थे, खेलते थे उनके साथ, और ये भी उनसे बात करते थे, लेकिन लोग समझते थे कि ये पागल है, ये खुद से बात करते रहता है, लेकिन अदृश्य रूप में श्रीनाथ जी बाहर निकलकर उनके साथ लीला करते थे और सब लोग उनको पागल मानते थे। तो एक दिन भगवान आए गोपाल जी मूर्ति के बाहर और कहे, हे चतुर्भुज चल घोड़ा बन जा, मुझे आप घुड़सवारी कराओ। चलो ठीक है, तो बैठ गए उसके ऊपर, घोड़ा बने, भागो अभी चलो, भागने लगे। सब लोग बोल रहे पागल लड़का ये क्या कर क्या रहा है, पूरे मंदिर में डोल रहा है घोड़ा बन के, और बात भी कर रहा है ऐसे मानो कोई बैठा हुआ है उसके ऊपर, सब लोग हंस रहे हैं क्या पागल लड़का ये। चलो यहां तो ठीक था, सब लोग हंसी मजाक कर रहे थे, आनंद ले रहे थे। बहुत देर घोड़ा घुड़सवारी करने के बाद में घोड़े का ब्लैडर फुल हो गया। हाँ तो उसने कहा, ठाकुर जी महाराज जरा हमको ब्रेक दे दो, उनको लघु शंका करके आना है। तो बोला कि घोड़ा बने हो ना, घोड़े की तरह करो। तो बोला नहीं मंदिर है मेरा, ये मंदिर है आपका ये। बोले मुझे नहीं पता, आप घोड़े हो तो घोड़े की तरह करो, घोड़े को सब माफी है। तो वो फिर वो उसको कंट्रोल नहीं रहा, तो वो फिर चालू किया उसने अपना काम, पूरे मंदिर में उसकी धार घूमती घूमती ये घोड़ा बन के जा रहा है, और सब लोग उसे बहुत पीटा, उसको बहुत पीटा, अरे क्या अब तक तो ठीक था मजाक मजाक में, अभी तो ये बहुत ज्यादा बढ़ गया, उसका मंदिर में पेशाब करने लगा, ये बहुत पीटा उसका और मंदिर से बाहर भगा दिया। और ठाकुर जी उसके ऊपर से उतर गए अदृश्य रूप में और तालियां बजाकर हंस रहे हैं जब इसको पीटा जा रहा है। बहुत जोरदार मीटिंग किया सब लोग ने मिलकर कि ये तो बहुत ज्यादा बढ़ रहा है उसका आतंक। फिर ठाकुर जी ने, फिर गोपाल जी ने मूर्ति स्वरूप में विट्ठल नाथ जी से बात की और बताई कि मैंने उसको कहा था उसको मंदिर से बाहर नहीं भगाना। विट्ठलनाथ जी कौन है, ये महाप्रभु वल्लभाचार्य के पुत्र थे, वो प्रमुख पुजारी थे विट्ठलनाथ जी। और कौन थे दूसरे, और कौन से नाथ है, विट्ठलनाथ जी और दो थे ना, गोकुलनाथ जी, एक गोकुलनाथ जी और विट्ठलनाथ जी, दोनों भाई थे वो, और वो वल्लभाचार्य जी के पुत्र थे और गोपाल जी के प्रमुख पुजारी थे वो। तो फिर उन्होंने, ठाकुर जी ने स्वयं समझाया उनको कि इनको बाहर नहीं करना, ये मेरे सखा है, मैंने उनको ये आदेश दिया था, मेरे आदेश से उन्होंने सब ये लघु शंका सब जगह की थी। हरी बोल। तो चतुर्भुज जो है इसलिए उनका नाम रखा गया था, क्योंकि उनके जन्म के पहले कुंभन दास जी ने चतुर्भुज का ध्यान में दर्शन किया था। तो बहुत सुंदर स्थान है ये, आप सब लोग इसका आनंद लीजिए, कितना बहुत सुंदर दिव्य रमणीक वातावरण आपके लिए भगवान ने 11:30-12 तक बना के रखा है। देखो सुंदर वातावरण, ठंडगार, कोई ज़्यादा ठंडी भी नहीं, गर्म कम भी नहीं, धूप भी नहीं, सरोवर का सानिध्य है, कल्प वृक्ष यहाँ विराजमान है, सब लोग कल्प वृक्ष को गले लगाना, ये सब वृक्ष जो है ये लीलाओं को अवलोकन करते रहते हैं और लीलाओं का सार ग्रहण करते रहते हैं। तो आप लोग इनको साधारण मत समझना, ये ऋषि मुनि है, राधा रानी का स्वरूप है, ये कल्प वृक्ष है दिव्य लोक के, और गोपियाँ स्वयं वृक्ष के रूप में यहाँ निवास करती हैं, अलग अलग प्रकार का इनका अस्तित्व है, और ऐसे दिव्य वृक्ष आपको कहीं भी नजर नहीं आएंगे। तो जरूर उनको गले मिलना, आपकी मन की तमन्ना इच्छा आशा इनके सामने प्रकट करना, आशीर्वाद लेना कि आप सब लोगों को दिव्य भक्ति प्रेम प्राप्त हो। हाँ, जिस माधुर्य से गोपियों ने भगवान को अनंत बार परास्त कर दिया, और भगवान ने भी उस परास्त होने के लिए आराम से स्वीकार किया, कोई कष्ट नहीं उनको हुआ, वो माधुर्य प्रेम जो है थोड़ा बहुत हमको भी मिले, उसके बारे में याचना करना इन पेड़ों के पास, उनमें वो शक्ति है कि आपकी इच्छा पूरी कर सकते हैं। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।